नमो ताहि जाते भये अर्हन्तादिमः जो विद्यादि सागर सुधी जो विद्यादि सागर सुधी गुरु हैं हितैषी शुद्धात्म में निरत नित्य हितोपदेशी वे पाप ग्रीष्म ऋतु में जल हैं सयाने पूजूं उन्हें सतत केवल ज्ञान पाने बोले भगवान महावीर स्वामी की अहिंसा धर्म की आचार्य उर्वर विद्यासागर मुनि महाराज की बहुत दिनों के बाद एक बार फिर मुझे लग रहा है कि हम सब जो अपरिचित होकर के भी बहुत परिचित हैं मिल रहे हैं और इन आत्मीय सुखद अनुभूति के क्षणों में हम कुछ बात कर लें। बात हमें न समाज की विकृतियों की करनी है, न हमें राजनीति की विकृतियों की करनी है, हमें किसी की बुराइयों की बात नहीं करनी है। हमें तो सिर्फ अपने जीवन को अच्छा बनाने की, अपने जीवन के विकास की बात करनी है। हमारा जीवन अगर अच्छा बनता है, हम अपने जीवन का विकास कर लेते हैं, तो मानिएगा कि सारा परिवेश विकसित होता है, सारा परिवेश अच्छा और पवित्र हो जाता है। जीवन के विकास के लिए बहुत सारी बातें हैं, अपन थोड़े से में चर्चा कर लेते हैं। मैं आपको कोई उपदेश नहीं दे रहा हूं, मैं आपसे सिर्फ बात कर रहा हूं। हम सब जीवन के विकास के लिए चिंतित हैं, जीवन के उत्थान के लिए, जीवन को अच्छा बनाने के लिए। कौन ऐसा होगा, मेरे ख्याल से कोई नहीं होगा जो अपने जीवन को बुरा बनाना चाहे। यह बात जुदी है कि उसका जीवन बुरा बन जाए, लेकिन चाहता तो कोई नहीं। चाहते तो हम सब यही हैं कि हमारा जीवन बहुत अच्छा बने। हम ऐसा क्या करें जिससे कि हमारा जीवन अच्छा बन सके, हम एक बार खुद कह सकें कि हमने अपना जीवन बहुत अच्छे से जिया, तमाम विपरीतताओं के बावजूद भी, तमाम विषमताओं के बावजूद भी, और हम अपने जीवन को अच्छे से जी सकें। इसके लिए तीन बातों पर विचार करते हैं। सबसे पहली चीज, हम जो भी करें अच्छा करें और पूरी रुचि से करें। एक जगह लिखा हुआ है कि द बेस्ट इज द एनिमी ऑफ द गुड। बहुत अच्छे के चक्कर में कई बार बिगड़ जाता है ना। कैसे लग रहा है, कोई को ठीक से सुनाई पड़ रहा है? मुझे तो लग रहा है कि ठीक से नहीं सुन मैं अपनी बात आप तक भेज पा रहा हूं। कभी थोड़ा इसका वॉल्यूम कम हो जाता, कभी ज्यादा। मेरा तो ऐसा सेट रहता है वो वॉल्यूम, अभी इसमें कम ज्यादा होते रहता। अच्छा ठीक, कई बार ऐसा होता है कि सब ठीक रहता है लेकिन अपन को ठीक नहीं लगता ना, तो फिर सब कुछ गड़बड़ हो जाता है। ऐसे लगता है, मुझे लग रहा था कि ये कम ज्यादा हो रहा है। हम जो भी करें वो अच्छा करें और पूरे मन से करें, पहली चीज। दूसरी चीज पूरी ईमानदारी से करें, और तीसरी चीज जो भी करें बड़े विनय भाव से करें। देखिएगा ये तीन चीजें छोटी छोटी सी हैं, लेकिन हमारे जीवन के विकास के लिए, हमारे जीवन को अच्छा बनाने के लिए हमें मैसेज देती हैं। हम सब पढ़ने वाले लोग हैं, अगर हम पूरा मन लगा के पढ़ते हैं, पूरे इंटरेस्ट से पढ़ते हैं, तो हमें सफलता मिलती है। माँ घर में काम करती है, वो पूरा मन लगा करके घर का काम करे तो उसके घर के काम में सुंदरता आती है। दुकान चलाने वाला पूरे मन से पूरी रुचि से ग्राहक को उसके मतलब की चीज उपलब्ध कराता है तो उसे भी बहुत सेटिस्फेक्शन मिलता है। पूजा करने वाला आधे अधूरे मन से पूजा करे तो उसकी वो पूजा भी उसे उसके जीवन को अच्छा बनाने में मदद नहीं दे पाती है, और अगर वही उस पूजा के काम को बहुत मन लगा के करे। मैं सोचता हूं कि जो भी काम अच्छे हैं उन अच्छे कामों को हम करते हैं पर पूरे मन से नहीं करते हैं, पूरी रुचि से नहीं करते हैं। अगर हम उन सब कामों को पूरी रुचि से करें तो वे ही काम हमें एक बात आत्मसंतोष और एक बात अंतरंग में, जिसको अपन एक भरा पूरापन इनर फुलफिलमेंट कहें, वो हमें देने वाले हैं। हम कितना कुछ तो पा लेते हैं अपने जीवन में, लेकिन फिर भी कहां हम ये कह पाते हैं कि बस टू एनफ, बहुत हुआ, और वो जो हमारे भीतर प्राप्ति का आनंद है, वो जो हमारे भीतर प्राप्ति का संतोष है, वो नहीं आ पाता है। इसके लिए जरूरी है कि जो भी काम करें उस काम को पूरे मन से करें, और ये मान के करें कि काम करने का ही आनंद मेरे लिए सबसे बड़ा है। एक्ट मस्ट बी टोटल विदाउट फ्रुटेशन। हमने जो कुछ भी करा वो अपने आप में पूरा है, हमें उसका फल क्या मिला, वो जो फ्रूट ओरिएंटेड अपना एटीट्यूड है वो नहीं होना चाहिए। हमने अपना काम करा और बहुत मन से करा, उसका आनंद लिया, हमने पढ़ा, हमने पूरे मन से करा, पढ़ा हमारी जितनी क्षमता थी उतना हमने पढ़ा, अब इसके बाद कितनी सफलता मिली ये हमारे ऊपर निर्भर नहीं है। हम तो सिर्फ अपने काम को बहुत बेहतर ढंग से और बहुत मन से कर सकते हैं। कितने लोग तो हैं, कितनी कितनी तो मेहनत करते हैं, लेकिन जैसा सोचते हैं वैसा कहां मिलता है, फल मिलता है क्या? तो जो मिलता है वो कम जान पड़ता है। हमें अपनी मेहनत कम नहीं जान पड़ती ना, मजा ये है। काश अगर हमें ऐसा लगने लगे कि जितना फल मिला है वो मेरी मेहनत के बराबर मिला है, मुझे इससे ज्यादा फल चाहिए तो मुझे मेरी मेहनत भी बढ़ानी पड़ेगी, तो फिर मुझे असफलता दुखी नहीं कर पाएगी। फिर मुझे लगेगा कि मैंने जितनी मेहनत की थी, जितना मन लगा के काम किया था, उतना मुझे उसका फल मिला है। एक नाई का काम करने वाला व्यक्ति अपनी दुकान पर बैठा है, लोग उससे पूछते हैं कि क्यों, जब तुम्हारी दुकान में कोई बहुत बड़ा आदमी आता है तो तुम्हें कैसा लगता है, और कोई ऐसे ही रास्ता चलते कोई मूर्ख सा आदमी आकर के और अपने कटिंग वटिंग करने के लिए बोलता है तो कैसा लगता है? तो वो हाथ जोड़ के बोलता कि बाबू, मुझे तो मेरी कुर्सी पर जो भी आके बैठता है वो साहब ही मालूम पड़ता है। और इतना ही नहीं, मैं तो जब उनके सिर के बाल उतारता हूं, उनके सिर की गंदगी को हटाता हूं, तब तब मेरे मन में विचार आता है कि मुझे भी ऐसी अपने मन की गंदगी को हटा करके फेंकना है। बताइएगा, एक छोटा सा नाई का काम भी इतने पूरे मन से और इतनी पवित्र भावना से किया जाए तो जीवन को कितना सुंदर बनाएगा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि हम कौन सा काम कर रहे हैं, मैं ये कह रहा हूं कि हम जो भी काम कर रहे हैं उस काम को हम बहुत तहे दिल से पूरे मन से उसी काम को अपनी हॉबी बना करके, पढ़ना हमारी हॉबी हो जाए, पढ़ना हमारी मजबूरी है आज के समय में कि क्या करें, फैमिली में सब लोग चाहते हैं, एटमॉस्फियर ऐसा है कि पढ़े लिखे लोगों को ही सम्मान देता है तो दौड़ो। नहीं ऐसा नहीं, ऐसा क्यों, क्यों ना हम थोड़ा सा चेंज कर लें अपना एटीट्यूड और ये सोच करके कि ये ज्ञान प्राप्त करना तो मेरी हॉबी है, मेरा खुद का इंटरेस्ट है, तो देखिएगा वही काम, वही पढ़ने का काम जो कि हम सोच रहे थे कि अब पढ़ना पड़ेगा भाई, इतना पढ़े बिना कोई पूछने वाला नहीं है, अपना करियर ही नहीं बनेगा, इतना इतना तो करना ही पड़ेगा। नहीं ऐसा क्यों, क्यों ना हम ये सोच करके कि जब मेरे अंदर क्षमता है, मेरे अंदर एबिलिटी है, तो मैं उसकी उस अपनी क्षमता का, उस अपनी योग्यता का पूरा पूरा उपयोग कर सकूं। अपनी योग्यता का भरपूर उपयोग वही कर सकता है जो कि पूरे मन से पढ़ता है, पूरे मन से उस काम को करता है। तो पहली चीज अपन ये सीखें कि हम जिस क्षेत्र में हैं उस क्षेत्र में हम अपना काम पूरे मन से करेंगे, पूरी रुचि से करेंगे और उस काम करने का आनंद लेंगे। दूसरी चीज हम अपने काम को ईमानदारी से करेंगे। ऐसा नहीं है कि हम लोग अपने काम को ईमानदारी से नहीं करते हैं, पर जितनी ईमानदारी से करना चाहिए शायद उसमें कहीं कोई कमी रह जाती है। अच्छा जैसे एक बात पूछता हूं, अपन पढ़ते हैं, पढ़ते हैं तो क्या सचमुच ईमानदारी से पढ़ते हैं आपको लगता है? ईमानदारी के मायने मैं पहले क्लियर कर दूं कि पढ़ने की ईमानदारी यह है कि मुझे अधिक से अधिक ज्ञान हासिल करना है, जबकि अपन का अप्रोच क्या रहता है कि मुझे एग्जाम फेस करना है, बस एग्जाम में पास होना चाहिए, खत्म, बाकी आप जाना हो आपको काम जाने, वो अपने को क्या करना है। ये ईमानदारी में थोड़ी कमी हो गई कि नहीं? ठीक है, मैंने जो मेरे सामने लक्ष्य था मेरे अपने एग्जाम को क्लियर करने का, वो लक्ष्य मैंने ईमानदारी से पूरा किया, लेकिन उसके साथ साथ एक बहुत बड़ा लक्ष्य भी तो है कि मेरा ज्ञान बढ़ा। और देखो ऐसा सोच लेने के बाद अगर हमारे लक्ष्य में हमें कहीं असफलता भी मिलती है तब भी हम क्या सोचते हैं कि साल भर मैंने पढ़ा, भले ही, क्योंकि ये जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है ना, वो All these are not the criteria of the ability. All these competitive examinations are the criteria of selection and rejection. हमको 3000 लोग लेना है, अब 3 लाख बैठे हैं तो हमको तो 3000 लेना है, 3000 एक नंबर वाला अयोग्य हो गया इतनी जल्दी? अरे उसने कितनी मेहनत करी है, लेकिन अब चूंकि हमें 3000 लेना है इसलिए 3000 एक वाला अयोग्य हो गया, जबकि हो सकता है कि जो एक नंबर वाला है उसकी भी क्षमताएं और 3000 एक नंबर वाले की भी क्षमताएं बराबर हों, अपॉर्चुनिटी उसके फेवर में नहीं थी, बस इतनी शायद कोई सिचुएशन क्रिएट होने से वो 3000 एक नंबर वाला और 1000 ये सिर्फ एक नंबर वाला है। सोच के लिए कह रहा हूं कि क्यों हम 3000 एक नंबर पर आए हैं तो अपने को बहुत कमजोर और बहुत अयोग्य माने। नहीं, हमने अपनी पढ़ाई पूरी ईमानदारी से करी, हमने साल भर जो पढ़ा उससे हमने नॉलेज गेन किया है, हमारा कोई लॉस नहीं हुआ है। नंबर हमारा 3000 एक आया होगा लेकिन हमारा लॉस तो कुछ भी नहीं हुआ। लॉस बाहर में दिखाई पड़ता है कि वो जो एक अचीवमेंट था वो नहीं हो पाया, बस इतना ही हुआ है, लेकिन कोई बहुत मेजर लॉस नहीं हुआ है। ये एकदम सहसा नहीं अच्छा लगेगा, थोड़ा सोचना, मैं सोचता रहता हूं तो मुझे लगता है कि अगर हमारा कहीं कोई जैसा हमने चाहा था वैसा नहीं होता तो हम कितना डिप्रेस हो जाते हैं, तो कम से कम उससे तो बच जाएंगे, कितना टेंस हो जाते हैं हम, कितना हम अपने आप से हार जाते हैं। नहीं, हारना नहीं चाहिए, हम थक जाएं ये बिल्कुल अलग बात है कि थोड़े थक गए हैं, कितना तो हमने मेहनत करी थी लेकिन जो हमने सोचा था वहां तक नहीं पहुंच पाए, कोई बात नहीं, लेकिन हम हारे नहीं है। और छोटी छोटी चीजों से हार जाएं भैया, जीवन से तो नहीं हारे ना, कितना कुछ सुनने में आता है आज की जरा सी असफलता में हम जीवन से हारा हुआ मान लेते हैं अपने आप को, ऐसा नहीं करते। हम छोटी किसी किसी उपलब्धि से वंचित रह जाएं तो वो हमारी पूरे जीवन की हार नहीं होनी चाहिए। हमने अपना काम चूंकि ईमानदारी से किया था इसलिए हमें उस काम का संतोष है। एक घोष बाबू थे बंगाल में, उनका एक छोटा सा प्रेस था, तो वो एक छोटी सी बुकलेट उनके पास छपने के लिए आई, तो वो थोड़ा सा देख नहीं पाए। उनके जो कर्मचारी थे उन्होंने उसकी प्रूफ रीडिंग में कुछ थोड़ी गड़बड़ी कर दी और दो चार कमियां भूले रह गई। जैसे ही वो मालूम पड़ा घोष बाबू को तो बड़े दुखी हुए, और जिन्होंने वो किताबें छपवाई थी चटर्जी थे वो, तो बोले घोष बाबू अब कोई बात नहीं, दो चार भूलें रह गई हैं तो क्या फर्क पड़ता है, दे दीजिएगा मैं ऐसे ही बांट दूंगा। उन्होंने कहा नहीं, तीन दिन ठहरिएगा, तीन दिन और मुझे दीजिएगा। ठीक है, तीन दिन बाद चटर्जी जी आए तो बोले कि बुक्स हो गई हमारी, हाँ ले जाइएगा। देखा तो उसमें कोई भी गलतियां नहीं थी, अब एकदम बढ़िया थी। मालूम पड़ा कि घोष बाबू ने पूरी किताब अपनी तरफ से फिर से प्रिंट कराई, 2000 कॉपियां। तो चटर्जी जी बोले कि अरे आपने इतनी मेहनत करके और इतनी कीमत चुका करके और काहे को इन दो चार भूलों के लिए अपना इतना नुकसान करा, ऐसे ही दे देते क्या फर्क पड़ता, दो चार भूलें किताब में रह गई तो ऐसे तो रह ही जाती हैं। तो मालूम उन्होंने क्या जवाब दिया कि ये किताब 2000 लोगों के पास पहुंचती और जब वे उसमें छापा खाने की प्रेस की गलतियां देखते तो उन्होंने क्या लगता कि देखो घोष बाबू के प्रिंटिंग प्रेस में बहुत प्रूफ की गलतियां हो जाती हैं, ये तो अच्छा प्रेस नहीं है, मेरा वो बहुत बड़ा नुकसान था, ये 2000 कॉपियां मुझे फिर से छापना पड़ी ये बहुत बड़ा नुकसान नहीं है, मेरा बहुत बड़ा नुकसान था कि मेरी अपनी ईमानदारी पर लोग उंगली उठाने लगते हैं। मैं अपना काम करूं उसमें कोई एरर, मेरा जहां तक सोच है कि 0.1% भी एरर नहीं होनी चाहिए, अगर होती है तो हमें बस सहर्ष उसको स्वीकार करना चाहिए, यही हमारी ईमानदारी है, और उस अपनी गलती को निकालने के लिए हमें प्रयत्न करना चाहिए, तब हम कोई भी काम करेंगे देखिएगा फिर उस काम में कितनी सुंदरता आती है, वो काम हमारे जीवन को कितना अच्छा बनाता है। और तीसरी और आखिरी चीज, आज आपसे इतनी ही बात करूंगा, मुझे लगने लगता है कि मैं आपको बुला करके और आपको कोई बहुत हैवी डोज तो नहीं दे रहा हूं, आपको लगेगा कि अच्छा इसलिए बुलाया था इतनी सारी बातें हम पर थोपने के लिए, नहीं भैया मैंने तो आपसे प्यार के लिए बुलाया था कि अपन बैठेंगे और बात करेंगे, आपकी प्रॉब्लम्स होंगी मेरे से बनेगा मैं सॉल्व करूंगा, आपकी मदद होगी मेरे से बनेगा मैं करूंगा, मैं आपको कोई बहुत बड़ी चीज करने के लिए नहीं कह रहा हूं, आप जहां हैं वहां अच्छे से करिए, आप जो करते हैं आप ईमानदारी से करिए और जो करते हैं वो पूरी विनय से करिए, क्योंकि हम ही नहीं है करने वाले, हम ही पढ़ने वाले नहीं हैं, हमसे पहले भी बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने बहुत बहुत पढ़ा है, हमसे पहले भी बहुत लोग हुए हैं जिन्होंने अपने जीवन को बहुत बहुत अच्छा बनाया है, इसलिए उनके प्रति हम कृतज्ञ हैं क्योंकि उन्होंने हमें मार्ग दिया है, उन्होंने हमें प्रेरणा दी है, इसलिए हम जो भी काम करते हैं उस काम से पहले पूरे विनय से भर के उस काम को करते हैं, उन सबको याद करते हैं जिन्होंने हमें अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा दी, जिन्होंने स्वयं अपने जीवन को अच्छा बनाया उनके प्रति विनय। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हुए, उनको मैं पढ़ रहा था, उसमें लिखा कि वो बाजार से दो चार अगरबत्तियां खरीद करके लाए और अगरबत्ती ऐसे हाथ में पकड़ के खड़ी करके और उसको जलाने की कोशिश की, एक तीली खत्म नहीं जली अगरबत्ती, दूसरी तीली खत्म नहीं जली अगरबत्ती, तीसरी तीली भी अब कितनी जलेंगी तीलियां, तो एकदम उनको ध्यान में आया कि अरे इनको जरा ऐसे पकड़ के जलाएंगे तो कैसे जलेंगे, तो जब अगरबत्ती को झुकाया और फिर जलाया तो अगरबत्ती बहुत जल्दी जल गई। हमारा जीवन भी रोशन होता है, कब रोशन होता? अकड़े अकड़े नहीं होता, झुकने से होता है। मोमबत्ती नहीं जलती अकड़े अकड़े तो। हम अगर अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं तो हम झुक करके बनाते हैं। मैं झुकने को कमजोरी नहीं मान रहा हूं, हम हर जगह थोड़ी झुकते हैं, हम बेईमानी के लिए थोड़ी झुकते हैं, लेकिन हमारे अंदर सम्मान है ईमानदारी के प्रति, अपने काम के प्रति। अपने से पहले जिन्होंने ऐसे अच्छे काम किए उनके प्रति हमारे मन में सम्मान है, उनके प्रति हमारे मन में विनय है। मैं आपसे जगह जगह झुकने के लिए, जगह जगह माथा झुकाने के लिए नहीं कह रहा हूं, मैं तो अपने काम के प्रति मेरा सम्मान है, मेरा आदर है, मेरी विनय है, और जो अच्छे काम में लगे हैं उनके प्रति भी मेरी विनय है। अगर ये हमारे मन में विनय का भाव बना रहे तो फिर देखिएगा हमें अपने पढ़ने का या हमें अपने और दूसरे काम करने का कितना आनंद आता है और हमारा जीवन कितना भरा पूरा और हमें अच्छा मालूम पड़ता है। एक कहीं पर मैं घटना पढ़ रहा था, वो आपको सुनाऊं और बस। फिर अपने को आज पूरा दिन है और 1 बजे से मैं फिर आपके साथ बैठूंगा, और जो लोग और भी आए हैं, बहुत सारे लोग आए हैं आपके लिए इंट्रैक्शन के लिए, सीनियर्स भी हैं, उन सब से खूब प्यार से मिलिएगा। 4 बजे अपन बैठेंगे, फिर क्वेश्चन आंसर्स के लिए क्विज थोड़ी देर करेंगे, 15-20 मिनट, फिर करियर काउंसलिंग। मैं पूरा प्रोग्राम जैसा सोचता हूँ वो आपको बता रहा हूँ, पूरे दिन अपन बस इसी तरह से। लेकिन कहीं कोई मन पर बोझ नहीं लीजिएगा, बहुत पूरे मन से, पूरे उत्साह से, और हमें कुछ गेन करके यहाँ से लौटना है। हम यहाँ से अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रेरणा लेकर के लौटेंगे और बेहतर ढंग से फिर से एक बार फिर लौटेंगे कि हाँ, कम से कम आपको इतना तो करना चाहिए, हमारे लिए बताने के लिए नहीं लौटेंगे कि हमने इतना इतना कर लिया। मैं तो मानता हूं कि अगर हम इस तरह से अपने काम को करें तो हम जरूर से इस बात के लिए उत्साहित होंगे कि हम बताएं कि हमने, हमारे जीवन में कभी ऐसा नहीं होता कि कुछ हम ऐसा करें जिससे कि हम किसी को बता सके कि हमने देखो इतना ऐसा करा। आप आज के समय में ये कहां मिलता है अपने लिए कि हम किसी को कहें कि हमने ये अचीवमेंट किया और दूसरा हमारी पीठ थपथपाए। हम ये लेकर के लौटें कि अगर किसी ने हमारे किसी छोटे छोटे से छोटे गुण को भी सराहा है तो हम भी अपने आसपास के परिवेश में कोई छोटा सा गुण किसी के भीतर दिखें देखेंगे तो उसको सराहेंगे, उसकी प्रशंसा करेंगे, उसे प्रमोट करेंगे। और वो प्रेरणा उसके जीवन के लिए आगे बढ़ाने में कारण बनेगी। ये रिवरेंस ऑफ लाइफ है, ये सम्मान है हमारा अपनी गुणवत्ता के, अपने जीवन के प्रति, अपने काम के प्रति। ये इतनी विनय हमारे भीतर हमें लानी है। एक व्यक्ति थे तो वो ट्रेन में यात्रा करने के लिए स्टेशन पहुंचे तो देखा कि बहुत रश था। अब कोई डिब्बा खाली मिले तो बैठे, तो देखा तो एक डिब्बा बिल्कुल खाली था, उसकी खिड़की पर एक अच्छे बढ़िया हाइट वाइट और हेल्थ बहुत अच्छी पठान वो बैठे हुए हैं खिड़की पर और पूरा डिब्बा खाली है, और भी लोग वहां खड़े हैं और उनसे कह रहे हैं दरवाजा खोलो, नहीं खुलेगा। अब बड़ी मुश्किल, तो कुछ लोगों को ठीक नहीं लगा तो वो उसको ले आए टिकट चेकर को, देखिए साहब ये खाली डिब्बा पड़ा हुआ है और दरवाजा नहीं खोल रहे हैं। तो टिकट चेकर ने कहा कि भाई दरवाजा खोलो और इन लोगों को बिठाओ। तो पठान साहब तो पठान ही थे, उन्होंने कहा कि चेकर साहब बिठा दो, लेकिन ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है कि गाड़ी चलने पर मैं इसको नीचे ना फेंकूं। वो घबरा गया इतना सुनते ही साथ, वो इधर उधर हो गया, चेकर भी आगे बढ़ गए कि भैया कौन उलझे बेकार में। अब देखना आप मजे की चीज, जब मैंने इसको पढ़ा था तो मैं बहुत सोच में पड़ा कि ऐसा हो सकता है, कोई इतना भी कठोर हो सकता है, हो सकता है, लेकिन उस कठोरता के बावजूद भी उसके भीतर कुछ है, सबके भीतर है। कोई कितना भी बुरा क्यों ना हो, उसके भीतर कुछ होता है जो बहुत अच्छा होता है। हमें क्या करना, हमें उसके भीतर के अच्छे को बाहर निकालने के लिए उस अच्छे का सम्मान करना, इतना ही करना है। हमारे भीतर भी कितना कितना कुछ है जो अच्छा नहीं है, हमें खुद ही अच्छा नहीं लगता। सबको, सबके जीवन में कुछ ना कुछ ऐसा होता है जो उस व्यक्ति को खुद ही अच्छा नहीं लगता कि अरे ये मैं यहां अच्छा नहीं हूं, हालांकि दूसरे से कह नहीं पाता कि मैं यहां गलत हूं। ये बहुत साहस चाहिए इसके लिए, बहुत साहस चाहिए, लेकिन अपने को खुद तो मालूम है कि हम यहां पर ये अच्छे नहीं है, या हम यहां पर हमें ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन इसके बावजूद भी हमारे भीतर जो अच्छा है हम उसे ही देखते हैं। ऐसा ही दूसरे के भीतर भी जो अच्छा है हम उसको देखें और उसका सम्मान और उसकी प्रशंसा करें, उसके प्रति विनय करें। वो व्यक्ति जो है देख रहा था कि पठान साहब बहुत कठोर है, लग तो रहा है, लेकिन बात क्या है कि डिब्बा नहीं खोल रहे हैं और एक अकेले इसमें बैठे हैं, जरा टटोला तो जाए इनका मन, वहीं खड़े रहे, सब तो यहां वहां हो गए, वो वहीं खड़े रहे। तो पठान साहब बोलते हैं, क्या तुमको इस गाड़ी से नहीं जाने का? तो बोलते, जाने का तो है, तो फिर बैठना वहां किसी डिब्बे में। बोलते, बैठूंगा तो इसी डिब्बे में। क्यों इसी डिब्बे में क्यों? बोले, इतने बहादुर आदमी के पास अगर जगह नहीं मिली तो बाकी ट्रेन में बैठने का मतलब क्या? अब देखिएगा, अब पठान साहब बिल्कुल मुश्किल में पड़े हो। तो फिर भी उन्होंने कहा कि देखो, मैंने अभी जिससे जो कहा था तुम्हें उसको सुनकर के भय नहीं लगता? तो इन्होंने एक सेंटेंस और कह दिया कि इतना बहादुर आदमी मैं जानता हूं भीतर से बहुत दयालु भी होता है, और वो दयालुता मैं आपकी देखना चाहता हूं। अब तो कोई बात ही शेष नहीं रही, पठान साहब उठे, दरवाजा खोल दिया, उनको भीतर बिठा लिया। अब यहां तक तो ठीक था, भीतर उनकी जीवन साथी थी जो दो छोटे छोटे बच्चे थे, सबको इन्हें प्रणाम किया और धन्यवाद दिया कि आप लोगों की सबकी कृपा से और मुझे बैठने मिल गया। बैठे नहीं थे कि अगले स्टेशन पर एक बूढ़ी सी अम्मा आई और दो और लोग आए। तो बूढ़ी सी अम्मा को दरवाजा खोल करके बिना पठान साहब से पूछे और इन्होंने बिठा लिया अपनी जगह पर, खुद खड़े हो गए। लेकिन वो जो दो लोग जरा ठीक नहीं थे, उनको चूंकि मना कर दिया था, ये पठान साहब ने देख लिया। तो पठान साहब बोले कि देखो, तुमने जिसको बिठाया तो ठीक है, लेकिन तुम भी बैठोगे, बैठ जाओ। तो थोड़े और खिसक गए और बैठ, वो भी बैठ गए। अब ऐसे कर करके हर स्टेशन पर कहीं दो बिठा ले, कहीं तीन बिठा ले, और पठान साहब को नींद आने लगी, कुछ नहीं बोले वो और सो गए। बोले, सुनो, जिसको भी तुम्हें बिठाना हो बिठाना, लेकिन तुम जरूर बैठना। अब इतना चेंज हो गया। अब यह हुआ कि जब पठान साहब की नींद खुली तो देखते हैं वो कि उस डिब्बे में उनके अलावा 12 लोग और बैठे हैं। तो अब अच्छा संबंध बन गया था। काहे से बना संबंध? विनय से बना, सम्मान से बना। दोनों को अच्छा लगा, दोनों को कठोर होने में अच्छा नहीं लग रहा था ना। अपन को भी तो नहीं लगता जब अपन बहुत कहीं बहुत कठोर हो जाते हैं तब, किसी के प्रति भी। तो पठान साहब बोले कि भाई, रेलवे वालों को तो आपके लिए डिब्बे में बिठाना चाहिए, जिससे कि बहुत लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी, आपने 12 लोगों को बिठा लिया तो ये भी कम नहीं थे। बोलते पठान साहब, आपको भी रोज बैठना पड़ेगा, वरना खाली डिब्बा कहां से मिलेगा आप जैसे व्यक्ति से। मेरे कहने का आशय जो है वो यही है कि हम अपने जीवन में पाते तब हैं जब हम अपने जीवन में विनय से भरे होते हैं। हमारे भीतर बहुत कुछ अच्छा है, लेकिन कोई चाहिए जो हमारे उस अच्छे का सम्मान करे और वो उसको बाहर निकाल के लाए। तो हम तो बहुत अच्छे हैं ही, ऐसा ही हम दूसरे के बारे में सोचें कि सब बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो अच्छाई कहां छुपी है? जयनंद कुमार ने लिखा कि यहां सबके भीतर कुछ ना कुछ अच्छा है, हम इंतजार करें उस अच्छे के बाहर निकलने का, हो सकता है कि इसमें पूरा जीवन भी व्यतीत हो जाए। बहुत धैर्य का काम है, अपने भीतर की अच्छाइयों को प्रकट करने के लिए ही तो हम सब यहां पर बैठे हैं। हम अपने काम को, अपनी पढ़ाई को पूरे मन से करें, पूरे चाव से करें, पूरी ईमानदारी से करें और पूरे विनय के साथ करें तो हमारा जीवन बहुत अच्छा बनेगा। इसी भावना के साथ कि हम सबका जीवन बहुत अच्छा बने, बोले आचार्य गुरु विद्यासागर मुनि महाराज की।
मैं आपको एक बार अगले सत्र के कार्यक्रम की रूपरेखा फिर से बता दूं। मुनि श्री को आहार देने के बाद और स्वयं भोजन करने के बाद ठीक 1 बजे हम इसी पांडाल पर एक बार फिर से बैठेंगे। इस सत्र में स्टेट वाइज ग्रुप में मुनि श्री से बातचीत का अवसर हमारे प्रतिभाशाली छात्र छात्राओं को मिलेगा। अपनी अपनी विधाओं के विशेषज्ञों से व्यक्तिगत कैरियर काउंसलिंग का अवसर भी हमारे अवार्डी इस दोपहर के सत्र में लाभ लेंगे। एक जैन क्विज का आयोजन हमने किया है जिसमें सर्वोच्च अंक प्राप्त करने वाले 20 अवार्डीज को कल सुबह के सत्र में हम पुरस्कृत करेंगे। एक जानकारी भी मैं आपको दे दूं, अगर आपको किसी भी प्रकार की जानकारी की आवश्यकता है तो हमारे मोबाइल इंफॉर्मेशन जो नीली छतरी वाले हैं,
रत्नेन्द्र बोलिए,
जिनेन्द्र बोल कर खुद जिनेन्द्र बोलिए,
तो जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए,
जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए,
जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए,
जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए,
हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो,
हे जिनेन्द्र ज्ञान दो मोक्ष का वरदान दो,
कर रहे हम प्रार्थना प्रार्थना पर ध्यान दो,
कर रहे हम प्रार्थना प्रार्थना पर ध्यान दो,
तो जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए,
जय जिनेन्द्र बोल कर हृदय के द्वार खोलिए,
जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए,
जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र जय जिनेन्द्र बोलिए,
जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए,
जय जिनेन्द्र की ध्वनि से अपना मौन खोलिए।
इस जिनेन्द्र गीत के बाद हम मुनि श्री को अर्घ्य समर्पित करें।
उदक चंदन तंदोला पुष्प कई चर सुदीप सुधु फल अर्घ कई धवल मंगल गान रवाकुले जिन ग्रहे मुनिनाथ महाम्यज।
ओम ह्रीम श्री मुनि क्षमा सागर जी महाराज एवं मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज के चरणारविंद में अनर्घ पद प्राप्त अर्घम निर्वपांति नमोस्तु मुनिवर। नौ बार रमोकार मंत्र पढ़कर कायस्तर करें।
बोलिए पूज्य मुनि श्री क्षमा सागर जी महाराज की, पूज्य मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज की। हमारे अवार्डी यही रोकेंगे, हमारे सहयोगी उन्हें बताएंगे कि उन्हें कहां वस्त्र बदलने हैं।
बोलो भगवान महावीर स्वामी की जय। सभी अतिथि जनों का, प्रतिभावान छात्र छात्राओं का, जैन समाज अशोक नगर मैत्री समूह परिवार हार्दिक स्वागत करता है, हार्दिक अभिनंदन करता है। स्थानीय समाज के बंधुओं से अनुरोध, कृपया जो हमारे अतिथिगण आए हैं उनकी व्यवस्थाओं का ध्यान रखें वा जो बैरिगेट्स हमने निर्धारित किए हैं उनके आगे आने की चेष्टा न करें। हमारे महिला वॉलेंटियर्स बालिका वॉलेंटियर्स ध्यान दें, श्री ईश्वरलाल जी के मकान पर जो हमने स्थान निर्धारित किया है बालिकाओं के लिए शुद्ध वस्त्र पहनने का, वहां हमारी वॉलेंटियर्स बालिका वॉलेंटियर्स हमारी छात्राओं को लेकर जाएंगे और उनको शुद्ध वस्त्र की व्यवस्था करेंगे। जूनियर जैन युवा वर्ग के साथी, जैन युवा वर्ग के मेरे साथी से मैं अनुरोध करूंगा वो मंच के नजदीक आए, वह हमारे सभी अवार्डीज जिन्हें आज आहार देने हैं। सभी हमारे अवार्डीज को आप शुद्ध वस्त्र की व्यवस्था करेंगे। भाई शैलेंद्र जी मेरी ध्वनि को श्रवण कर रहे हो तो आपसे अनुरोध आप मंच के नजदीक आवे। बहन मुनिया जी, बहन मुनिया जी आप सभी छात्राओं को महावीर कॉलोनी स्थित ईश्वरलाल जी के निवास पर लेकर जाएंगे, वहां उनके शुद्ध वस्त्र की व्यवस्था है। हमारे सभी अवार्डीज को उसमें सहयोग करेंगे। सभी अवार्डीज अभी इसी स्थल पर शुद्ध वस्त्र पहनकर आकर आपको हमारे साथी परम पूज्य मुनिश्री के जहां आहार होंगे वहां तक ले जाएंगे और आपको सुगमता से आहार देने की व्यवस्था कराएंगे।
हमेशा की तरह आज भी हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाने की प्रक्रिया पर विचार करने बैठे हैं। जीवन अच्छा बनता है अच्छे लोगों के साथ रहने, जीवन अच्छा बनता है अच्छे लोगों को फॉलो करने से, अच्छे लोगों के गुणों का स्मरण करने से, उनके गुणों की प्रशंसा और उनके गुणों की आराधना करने से। इसलिए हम लोगों ने पिछले दिनों जो पूज्य पुरुष हैं जिन्होंने अपने जीवन को आदर्श बना लिया है उनके गुणों के स्मरण, उनके दर्शन और उनके प्रति अपनी श्रद्धा भक्ति कैसे व्यक्त करें जिससे कि हमारा भी जीवन उनके जैसा बने, इस बात पर विचार किया है। भगवान की आराधना में महत्वपूर्ण उनके गुणों से जुड़ना है। भक्ति के मायने ही ये है कि जिसमें हम एकाकार होते हैं, जिसमें हम गुणों से जुड़ते हैं और गुणवान से जुड़ते हैं। विभक्त यानी अलग हो जाना और भक्त यानी जुड़ जाना। ऐसी जो भक्ति है वो बादीराज महाराज ने बहुत उत्कृष्ट भावों के साथ की है। हम उन्हीं से प्रेरणा लेकर के अपने भक्ति के भावों को कैसा अच्छा बनाएं इसका प्रयास कर रहे हैं। कल से हम आने वाली युवा पीढ़ी के लिए आगे बढ़ने में, जीवन को अच्छा बनाने में कौन सी बातें सहयोगी हैं, इस पर विचार करेंगे। लेकिन आज हम सब अपने जीवन को अच्छा बनाने की इस छोटी सी प्रक्रिया पर विचार कर लें। किसी को कुछ भी नहीं आता, किसी से कुछ भी नहीं बनता। इतना तो बनता है कि जो हमसे बड़े हैं, जो हमसे महान हैं, उनका गुणगान कर ले। इसमें तो मेरे ख्याल से कोई बहुत मुश्किल सी चीज नहीं है। ना सही गुणगान, कम से कम जो महान है उनके जैसे बनने का भाव ही कर लें। अगर इतना भी नहीं हो पाता तो कम से कम दिन भर में कुछ क्षण तो ऐसे निकालें जिससे कि उन महान आत्माओं के चरणों में बैठने का सौभाग्य मिल सके। भैया, इससे आसान और कोई चीज नहीं। दीपक जलता है या तो माचिस की तीली कागज पर रगड़कर खुद प्रयत्न करके और दीपक जलाया जाए। जलते हुए दीपक की प्रशंसा करके, उसकी रोशनी का गुणगान करके अपने जीवन में उजाला फैलाया जाए। अगर यह भी नहीं होता तो कम से कम जलते हुए दीपक के निकट जरा सा अपने बुझे हुए दीपक को खिसकाया तो जा सकता है, वो भी जल जाएगा। ये प्रयास भक्ति का है। भक्ति हमें भगवत्ता के निकट बैठने के लिए प्रेरित करती है। उनके गुणगान, उनके गुणों के स्मरण, उनके जैसे बनने की भावना की प्रेरणा देती है। भगवान की भक्ति करते हुए वादिराज महाराज कह रहे हैं, जानासि तुम मम भव भवे यच्च यादृक् च दुःखम्, जातम् यस्य स्मरणमपि वेशस्त्रवन् निष्पिनस्ति, तुम सर्वेशा सकृपीति च तामुपेतोऽस्मि भक्त्या, यत् कर्तव्यं तदी विषये देव एव प्रमाणम्। मैं आपके चरणों में आया हूं। भक्ति दो तरह से होती, अपनी आलोचना और गुणवान व्यक्ति की प्रशंसा। दोनों में से कोई भी एक तरीका भक्ति का अपनाया जा सकता है। जिसमें हम दोनों करते हैं वो भी एक ढंग है। प्रभुपतित पावन और मैं अपावन, अपनी आलोचना भी करी है, भगवान का गुणगान भी करा है, हो गई भक्ति। वैसे तो चार शब्द ही पर्याप्त बहुत उसका, बाकी तो सब विस्तार है उसका। प्रभुपतित पावन और मैं अपावन, आया इसीलिए कहे के लिए, पावन बनने के लिए आया हूं, वही प्रेरणा लेने के लिए आया हूं, उसी भावना से आया हूं। तो वादिराज महाराज भगवान के चरणों में निवेदन कर रहे हैं कि जानासि तुम मम भव भवे यच्च यादृक्ष दुःखम्। जन्म जन्मांतरों में मैंने जिस तरह की पीड़ा भोगी है वो सब आप जानते हैं। मैं अपनी पीड़ा आपको बताने नहीं आया हूं, मैं अपना रोना रोने नहीं आया आपके चरणों में, ना मुझे किसी से शिकायत करनी है कि किसी ने मुझे दुख दिया है।
तुम शरण आए उचरो निज दुख जो चिर लहाए, मैं भ्रमो अपन को विसरी आप अपनाए विधिफल पुण्य पाप। यहां तो आपके गुणों को जान करके मैं आपके चरणों में आया हूं और अपने बारे में कुछ कहने की भी मुझे आवश्यकता नहीं है क्योंकि आप सब जानते हो। कई लोग आज भी ऐसे पेशेंट हैं जो डॉक्टर के पास जाकर के कोई सिम्टम्स बताना पसंद नहीं करते, वो उस डॉक्टर को अच्छा नहीं मानते जो पहले सिम्टम्स पूछे, वो तो कहते हैं कि ये ऐसा हाथ और चेकअप करो और बताओ कि क्या चीज है, आप ही जानते। अपन भी ऐसे ही कर रहे हैं कि आपके हाथ में हमने अपनी नाड़ी दे दी, अब आप परखो, आप जाना सी तम भाव भवे यच्च याद रख दुखम। जितने जैसे मैंने भाव भाव में दुख पाए हैं मैं उनको आपसे कहने भी नहीं आया हूं, आप सब जानते, और मैं किसी की शिकायत करने भी नहीं आया हूं क्योंकि मैं अपने आप को भूला रहा इसलिए मैंने दुख पाए। दुख का कारण मुझे आपके दर्शन करने पर मालूम पड़ा है, आपके दर्शन से मुझे अपने स्वरूप का ज्ञान हो गया और मैं उसको अभी तक भूला था इसलिए दुख पा रहा था, और आप आज मुझे लगा कि मैं अगर अपने स्वरूप को प्राप्त कर लूं तो दुख का कोई कारण इस संसार में नहीं है, दुख का कारण मेरी अपनी अज्ञानता, मेरे अपने स्वरूप का विस्मरण, वो मेरे भीतर ही कारण है, वो कहीं बाहर नहीं है। इसलिए दो चीजें मैं करने आया हूं आपके सामने, मैं अपने दुखों को कहने नहीं आया, नहीं मैं अपने दुखों के लिए किसी और को जिम्मेदार ठहराने के लिए आया। मेरे साथ तो मुश्किल यह है भगवान कि अगर अपने उन दुखों की याद भी करूं तो ऐसा लगता है जैसे तलवार से किसी ने मेरे शरीर को खंड खंड कर दिया और अधिक पीड़ा होती, उस पीड़ा का स्मरण भी मेरे लिए बहुत पीड़ादायक है। मैं मालूम आपके पास क्यों आया हूं, तुम सर्वेशा सकृप इति चा, मैंने आपके बारे में यह सुन रखा है कि तुम सर्वेशा आप सबके स्वामी हो। असल में जो अपने आप को जीत लेता है, जो अपना स्वामी हो जाता है, वो सबका हो जाता है, और मैंने देखा है कि आपने अपने आप को जीत लिया है इसलिए आप सबके स्वामी हो। एक चीज वो सकृप इति चा और दयालु अत्यंत हो आप, दो चीजें एक साथ मिलना बहुत कठिन है। कोई व्यक्ति सबका स्वामी हो और बहुत दयालु हो, बताइए उसके पास जाकर के कहना पड़ेगा कि कृपा करो हमारे ऊपर कुछ
नहीं,
आपको सिर्फ करना क्या पड़ेगा, त्वाम उपेतोष्मि भक्त्या, मैंने भक्ति भाव से आपकी शरण स्वीकार कर ली है, इतना मेरे हाथ, ये अपना अपने हाथ का काम अपन को खुद करना पड़ेगा। कृपा सब पर बरसती है लेकिन पुरुषार्थ जिसका जितना होता है फल उतना उसको कमी वेशी मिलता है। निमित्त भगवान बनते हैं, उपादान में जिसकी जितनी योग्यता होती है फल उतना ही मिलता है, ये स्पष्ट है। भक्ति हमारी ऐसी नहीं है कि जिसमें हम भगवान के चरणों में और याचना करें कि आप ही दे दो, आप ही सब कर दो, हम तो आलसी हैं सो बैठे एक कोने में, आप ही करो सब, नहीं। अब देखना नीचे की लाइन में क्या कह रहे हैं, मैंने अपने आप को आपके चरणों में सरेंडर कर दिया है, मैं अब कुछ भी नहीं हूं, ताम उपेतोष्मि भक्त्या, यत कर्तव्यम तदी विषये देव एव प्रमाणम, मेरे बारे में जो करने योग्य हो आप करो, हमें कोई मतलब नहीं, आप हमारे लिए प्रमाण हो। जैसे कि मां के द्वारा अच्छे साफ सुथरे कपड़े पहना करके समझा बुझा करके बेटे को बाहर भेजा गया हो कि भैया उते बाहर न खेलियो, कपड़ा खराब न करियो, मनो भैया मानत है का दे अपने खराब कर करू के सबरे चले आए, लेकिन अब क्या करें, छुपे घर में, छुपने का कोई काम ही नहीं है, सीधे आके मां के सामने खड़े हो गए। यत कर्तव्यम तदी विषय देव एव प्रमाणम, हमारी अज्ञानता हम जानते हैं, हमारी मलिनता हम जानते हैं, लेकिन क्या करें, कोई उपाय नहीं है, हम तो आपके आपके सामने आ गए, अब हमारे बारे में आपको जो करना हो, आपको धुलाना नहलाना हो, फिर से अच्छे कपड़े पहनाना तो पहनाओ, नहीं तो आप जानो आपका एक ही महामाई। देखना एक बहुत सहज सा भाव है, इतना आत्मीय भाव है। पहला अर्थ तो यही है सीधा सीधा कि आपको जो करने हो सो करो, हम तो जी आ गए। डरे रहो दरबार में धक्का धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा कि आप ही धनी बन जाओ, मैंने डरे रहो। हम तो आपके चरणों में अपने को छोड़ दिया, आप जैसा भी होगा वो आप जान, मतलब हमारा कोई उसमें रोल नहीं है, आपका सारा काम है। सीधा अर्थ तो ये लगता है, लेकिन जरा विचार करें, हमारी भक्ति इससे भी एक कदम आगे है। आपका ज्ञान हमारे लिए प्रामाणिक है, क्योंकि आपके ज्ञान में मेरा भला बुरा मेरे उपादान के अनुसार जो होना है वो सब आपके ज्ञान में है। मैं व्यर्थ ही संकलेश करूं या अहंकार करूं, व्यर्थ है, आप प्रमाण है, अर्थात मुझे साम्यभाव रखना चाहिए, यही आपकी प्रामाणिकता मुझे सिखा रही है। भक्ति का इतना उत्कृष्ट विचार हो सकता है, वादिराज महाराज कह रहे हैं कि आप प्रमाण है, अर्थात आपके ज्ञान में, आपके ज्ञान में तो मेरे भले बुरे की सारी बातें, मेरे परिणमन जिस तरह मेरा होना है वो सब आपके ज्ञान में है। मैं व्यर्थ ही अपने अनुसार परिणमन करना चाहता हूं, मैं व्यर्थ ही चाहता हूं कि अच्छा हो जाए बुरा हो जाए, नहीं, मेरे अपने कर्म जिस तरह के होंगे वैसा मेरा परिणमन होगा। मैं आपसे यही शिक्षा ले रहा हूं कि मुझे साम्यभाव रखना चाहिए, हर्ष विषाद नहीं करना चाहिए। आप ही प्रामाणिक हैं, क्योंकि वास्तव में जो भगवान को प्रामाणिक मानता है वो संसार के सुख दुख में उतनी ही समता रखता है। और तीसरा कह रहे हैं उसी में से अर्थ कि आप ही मेरे लिए प्रमाण हैं, यानी आप ही मेरे लिए स्टैंडर्ड हैं, आप ही मेरे लिए आइडियल हैं। आपको देख करके मुझे आपके जैसे बनने की भावना उत्पन्न हुई है, यही आपकी प्रामाणिकता। देखिएगा, इतनी सी बात को आचार्य महाराज भक्ति करते हुए भगवान के सामने किस तरह से व्यक्त कर रहे हैं। अपनी पुरुषार्थ को छोड़ा नहीं है, भगवान के प्रति भक्ति और उनकी कृपा का एहसास भी है, ये दोनों चीजें भक्ति में है। भक्ति हमें आलसी भी नहीं बनाती और भक्ति हमें अहंकारी भी नहीं बनाती, भक्ति हमें हमारा सम्यक पुरुषार्थ करने की प्रेरणा देती है और अत्यंत श्रद्धा के साथ करने का। क्योंकि कोई पुरुषार्थ करता है तो उसे अहंकार आ जाता है कि ये सारे अचीवमेंट्स मेरे हैं। अगर हमारे अंदर श्रद्धा नहीं है तो ऐसा अहंकार आने में देर नहीं लगे, और या फिर हमें अपने पुरुषार्थ पर भरोसा नहीं है, हम तो सिर्फ हाथ फैलाए खड़े हैं कि आप ही करो कृपा, तो इसमें तो दीनता ही है, इसमें तो याचना ही है। कार्य किसी और के करे हमारे जीवन में नहीं होगा, हमारे करे हमारे जीवन में होगा। इसलिए दोनों का समन्वय भक्ति में है कि जहां एक तरफ श्रद्धा है वहीं दूसरे तरफ अपने कर्तव्य का भी बोध है। वास्तव में ऐसी भक्ति ही हमारे जीवन को ऊंचा उठाने में, अच्छा बनाने में कारण बनती है। प्रापक दैवम तवनुति पदैर जीव के नोपदिष्ट, सुना है भगवान मैंने, प्रापक दैवम तवनुति पदैर जीव के नोपदिष्ट पापाचारी मरण समय सार में पी स्मेयोपि सौख्यम तम सर्व एक मिनट कह संदेहो यदुपलवते वाश्वशी प्रभुत्वम जलपन जापैर मणि विरमल स्तन नमस्कार चक्रम। भगवान मैंने एक चीज और सुनी आपके बारे कि आपके पंच नमस्कार मंत्र को अपने मरण के समय में एक अत्यंत पाप आचरण करने वाले कुत्ते ने भी सुन करके अपना कल्याण कर लिया था, मैंने ऐसा सुना है, आप कंफर्म करिएगा ऐसा। हाँ, भगवान से कह रहे हैं सीधा सीधा, आप कंफर्म करिए, नहीं मुझे बात कंफर्म है कि ऐसा हुआ है, ऐसा कह रहे हैं वादिराज महाराज कि मुझे यह पूरा विश्वास है कि आपके पंच नमस्कार मंत्र को मात्र सुन करके एक पूरे जीवन पापाचरण करने वाले स्वान ने भी सार में स्वान या कुत्ते ने भी अपना कल्याण कर लिया था, स्वर्ग का वैभव प्राप्त कर लिया था। कह संदेहो यतु प्लवते वास्वशी प्रभुत्वम जलपन जाय पर मणि विरमलई स्तन नमस्कार चक्रम। मणियों की माला पर आपका सुमरण करने योग इतना महत्वपूर्ण आपका वह पंच नमस्कार मंत्र है, अगर कोई उसका निरंतर उच्चारण करे उसने तो क्षण भर के लिए सुना था, और अगर कोई उस पवित्र मंत्र का निरंतर उच्चारण करे यानी आपके गुणगान किसी के हृदय में निरंतर चलते रहे, तो बताइएगा उसे अगर इंद्रों का वैभव और मुक्ति भी मिल जाए तो इसमें क्या आश्चर्य है। मैं आपकी भक्ति कर रहा हूं और मेरा कुछ लाभ हो जाए तो इसमें मुझे कोई बहुत आश्चर्य होने वाला नहीं, वो तो होगा ही। बताइए इतना कॉन्फिडेंस, इधर तो अपन भक्ति करते हैं और आगे पीछे देखते हैं कुछ हुआ कि नहीं हुआ, होगा भी कि नहीं होगा, कर लो। नहीं ऐसा नहीं, आधे अधूरे मन से नहीं, कितनी श्रद्धा से कर रहे हैं कि वो तो होगा ही। जब मैं आपकी भक्ति करके अपने चित्त को निर्मल करूंगा तो चित्त की निर्मलता से मेरे सारे काम आसान हो जाएंगे, मुझे तो मुक्ति तक मिल जाएगी, इसमें क्या संदेह है। पर मन में ये प्रश्न तो उठता ही है कि किसी पर भगवान की कृपा कमती है, किसी पर ज्यादा होती है क्या, सब पर समान होनी चाहिए। सुनते तो यही है, उस कुत्ते को तो जो है और इतना सा सुनकर के भी और स्वर्ग पहुंचा दिया, कुछ जमती नहीं बात, हमारी तो जिंदगी निकल गई माला फेरते फेरते, कुछ हुआ ही नहीं। हाँ ऐसा मन में आ सकता है, शायद इसीलिए बादीराज महाराज ने ये लिखा हो हम जैसे कमजोर श्रद्धा वालों के लिए, हमारे भीतर आत्मविश्वास पैदा करने के लिए कि एक बार करके तो देखो। उसने अकेला सुना नहीं होगा उस कुत्ते ने, उसने धारण किया होगा, बिना धारण किए काम नहीं होगा, बिना धारण किए मन में पवित्रता नहीं आएगी। और हम भी सुनते हैं पढ़ते हैं बोल लेते हैं लेकिन हमारी भी चूक कहीं ना कहीं है, हम धारण नहीं कर पाते हैं। उन गुणों को स्मरण करने अकेले से नहीं होगा, उन गुणों को धारण भी करना पड़ेगा, उस आदर्श का स्मरण करना ही पर्याप्त नहीं है, उस आदर्श के गुणों को अपने जीवन में प्रकट करना भी जरूरी है, तब फिर देखें कैसे काम नहीं होता। एक साम्य भाव पर छोटी सी घटना सुनाऊं और एक भगवान की प्रति हमारी श्रद्धा पर छोटी सी घटना सुनाऊं, अपन को दोनों बातें स्पष्ट हो जाएंगी। भगवान की भक्ति, अगर हम भगवान को प्रामाणिक मानते हैं तो हमें समता भाव सिखाती है, संसार में सुख दुख के सैकड़ों अवसर आते हैं, हम उसी में उलझे रहते हैं और हमारा जीवन ऐसे बीत जाता है। भक्ति हमें प्रेरणा दे रही है कि हम सुख दुख के अवसर पर भगवान को प्रामाणिक मान करके व्यर्थ हर्ष विषाद से बचें, और दूसरी तरफ हम अपनी श्रद्धा को इतना अधिक आगे बढ़ाएं कि आदर्श के गुणों को हम अपने भीतर प्रकट कर सकें। तिरुवल्लुवर एक संत हुए दक्षिण भारत, लगभग सभी संप्रदाय के लोग उन्हें अपना संत मानते हैं। वो जुलाहे थे अपने संत बनने से पहले के जीवन में, और उनके शांत परिणाम से सब परिचित थे, पर कुछ युवक थे जिनके मन में उनकी परीक्षा करने का भाव आया, उनको थोड़ा तंग करने का भाव आया। आ जाता है कोई व्यक्ति सीधा सच्चे रास्ते पर चले तो इतना आसान थोड़ी, उसको ही परीक्षा से गुजरना पड़ता है। तो वो नवयुवक पहुंचा और उसने कहा कि मुझे धोती जोड़ा खरीदना है, दिखाइए। तो दिखाया धोती जोड़ा, तो उसने ज्यादा सोच विचार नहीं किया और एक धोती के दो टुकड़े करके कहा कि इस आधी धोती की कितनी कीमत, पूरी एक धोती की 2 रुपए कीमत, तो आधी धोती की 1 रुपए कीमत। वह शांत भाव से संत ने उत्तर दे दिया। संत की सज्जनता यही है, और उन्होंने उसका परिचय दिया। उस उसने उस आधे टुकड़े के भी दो टुकड़े कर दिए, फिर कहा कि कितनी कीमत, तो आठ आने पैसे, इसमें क्या। उसने और टुकड़ा कर दिया तो चार आने पैसे, और फिर दो आने पैसे, और फिर एक आने पैसे, और फिर तो टुकड़े टुकड़े हो गए। तब युवक ने कहा कि रख लो, ये हमारे काम के नहीं है। तो संत ने भी उतने ही शांत भाव से कहा, तुम्हारे ही क्या, अब तो ये किसी के काम के नहीं है, एक तरफ रख दिए। अब युवक लज्जित हो गया। हां, जब कोई इस तरह करता है तो उसे लज्जित होना पड़ता है, इस जीवन में ना होना पड़े, अगले जीवन में होना पड़े, होना तो पड़ता है जब कोई इस तरह से करता है। हमें भी सावधान रहने चाहिए इस तरह के काम करने से पहले, कि कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इन बुराइयों से हमें ही लज्जित होना पड़े, इन बुराइयों से हमारा ही घाटा ना हो जाए। और उसने लज्जित होकर के कहा कि देखिए, मैंने आपको बहुत नुकसान करा और आप इसकी पूरी कीमत ले लीजिएगा। तब उन्होंने, संत ने मालूम क्या जवाब दिया, बहुत शांत भाव से, कि नुकसान की भरपाई तुम नहीं कर पाओगे, अगर नुकसान चुकाना चाहते हो तो